अपना स्थान है उसको स्वक्षेत्र कहते हैं। तो कम से कम कितना होगा, तो अंगुल का असंख्यात विभाग पर, मतलब सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक निगोदिय जीव जो संसार का सबसे छोटा जीव है, उसके शरीर में अगर कोई जीव चला जाए तो उतना छोटा आकार हो जाता है उसका। फिर एक एक प्रदेश को बढ़ाता हुआ वो जब सबसे बड़ा शरीर धारण कर लेता है, लेकिन क्रम टूटना नहीं चाहिए, अगर टूटा तो फिर उस क्षेत्र परिवर्तन में प्रगति नहीं मानी जाएगी। समझना इस बात को, क्या जैसे मान लो किसी के असंख्यात प्रदेश है, अब आगे क्षेत्र परिवर्तन करना उसको स्वक्षेत्र परिवर्तन, तो अगली बार जब वो उस असंख्यात प्रदेश में एक प्रदेश की वृद्धि करके आकाश के क्षेत्र को घेरेगा, तब क्षेत्र परिवर्तन का जो कांटा था वो थोड़ा सा आगे खिसकेगा। मतलब ये जो जघन्य अवगाहना यहाँ है निगोद की, और यहाँ उत्कृष्ट अवगाहना महामत्स की, राघव मत्स की 1000 योजन, तो यहाँ से एक प्रदेश जब वृद्धि, बीच में उसके कितने करोड़ों भाव हो जाए, अगर एक प्रदेश वृद्धि नहीं हुई तो फिर भाव तो हो गए उसके, उतना समय भी उसमें ऐड हो गया क्षेत्र परिवर्तन में, लेकिन क्षेत्र परिवर्तन का जो कांटा था वो यहीं अटका रहा। फिर एक प्रदेश वृद्धि हुई तो और खिसक गया, 2 प्रदेश 3 प्रदेश 4 5 6 7 8 9 10 असंख्यात असंख्यात ऐसे करते बढ़ाते 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 यहाँ पर 1000 योजन तक के जब पैदा होगा वो, उस बीच में उसके अनंत भाव, वो जो पुद्गल परिवर्तन में थे ना, उससे भी न जाने कितने गुने भाव उसके और हो जाएंगे, तब जा करके वो पूरा होता है इतना बड़ा क्षेत्र परिवर्तन। ये स्वक्षेत्र परिवर्तन। और परक्षेत्र परिवर्तन किसको कहते हैं, मेरु पर्वत की जड़ में जो 8 रुचक प्रदेश होते हैं, आकाश के सबसे मध्य स्थान में 8 ऐसे स्थान होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़े बड़े बना के बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 प्रदेश होते हैं, गोस्तन आकार बनता है गाय के थन जैसा। तो वो जो मेरु पर्वत की जड़ में ये 8 प्रदेश हैं, और अपनी आत्मा में भी बीच के कुछ 8 प्रदेश होते हैं, उनको भी रुचक प्रदेश बोलते हैं। तो कोई जीव वहां पर सबसे छोटा शरीर लेकर के पैदा हो जाता है, सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्तक निगोद, और वहां पर वो अपने आत्म प्रदेशों को उन प्रदेशों पर स्थापित कर लेता है। ये इच्छा से नहीं होने वाला, कर्मयोग से हो जाए ऐसा तो वहां पर पैदा हो गया। ऐसा असंख्यात बार करेगा, जितने प्रदेश थे ना उसमें जीव में उतनी बार, फिर ऐसा करते करते फिर लोक के और भी जितने बाकी प्रदेश हैं वहां पर जन्म और मरण को प्राप्त होगा। जब सारे 343 राज्यों के हर कोने में वो जन्म और मरण पूर्ण कर ले तो ये परक्षेत्र परिवर्तन हो गया। परक्षेत्र यानी आकाश के क्षेत्र में, लोकाकाश में उसने परिवर्तन किया, भ्रमण किया। कितना काल लगेगा उसमें, कितना समय लग जाएगा, कितने भाव हो जाएंगे। आचार्य कहते हैं कि बहुवारम, ऐसा तूने बहुत बार किया है, तुझे आज होश नहीं है, तू मोह के नशे में सब भूल गया है, कितना भटक चुका है तू संसार में। फिर इसके बाद काल परिवर्तन बतलाया कि काल भरत और ऐरावत की अपेक्षा 2 प्रकार के हैं। कल्प कालों का चक्र चलता रहता है भरत ऐरावत में, और कल्प काल में उत्सर्पिणी पहले आती है और उसके बाद अवसर्पिणी आती है। तो ये काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, और इनका विस्तार आपने सुना था अभी कुछ दिनों पहले कि इसमें 6 काल होते हैं, उत्सर्पिणी में भी 6, अवसर्पिणी में भी 6। इस समय अवसर्पिणी का 5वां काल चल रहा है, इस काल का नाम है दुखमा, संस्कृत में दुह क्षमा बोलते हैं, समा का अर्थ होता है वर्ष, दुह क्षमा का अर्थ दुखों से भरे हुए हैं वर्ष जहां पर, ऐसा काल। तो ये काल पूरे, जैसे मान लो कोई जीव है काल परिवर्तन करने जा रहा है, तो उत्सर्पिणी के प्रथम समय में वो जन्म लेता है, फिर आगे कभी किसी और उत्सर्पिणी में दूसरे समय में जन्म लेगा। वही पॉइंटर वाली बात याद रखना, अभी काल परिवर्तन चालू किया, ये कांटा यहीं पर अटका हुआ है पहले समय में, फिर कभी भविष्य में क्या मालूम बीच में कितनी अवसर्पिणियां निकल जाए, उत्सर्पिणियां निकल जाए, कोई हिसाब नहीं। तो जब कभी वो दूसरे समय में जन्म धारण करेगा तो फिर वो कांटा ऐसे खिसकेगा थोड़ा सा, वो पूरा काल तो उसमें सम्मिलित होता जा रहा है, परिवर्तन जब यहां पूर्ण होने वाला है, अवसर्पिणी के अंतिम समय में जाकर परिवर्तन पूरा होगा। उत्सर्पिणी के प्रथम समय से लेकर यहां से लेकर यहां 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद जो अवसर्पिणी का अंतिम समय आएगा, वहां जाकर के वो कांटा रुकेगा। अब फिर किसी और उत्सर्पिणी में आकर के तीसरे समय में जन्म लेता है। समय का हिसाब आप समझो कि कितना बारीक है समय। आवली असंख समया संखित जावलिया ही हो ही उत्सासो। असंख्यात समयों की एक आवली होती है और संख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास होता है, जिस उच्छ्वास में 18 बार जीव जन्म मरण प्राप्त कर लेता है उसमें संख्यात आवलियां हैं और एक आवली में असंख्यात समय है। अब फिर निमेश काष्ठा आदि जो काल के और भेद हैं वो सब पार करके सागरों की अवधि पूर्ण करना, उसको 20 कोड़ा कोड़ी सागर किसको कहते हैं। एक सागर में तो चक्कर आ जाता है। पल्ले की परिभाषा आपको याद हो, 500 योजन लंबे चौड़े और गहरे गड्ढे में भोग भूमिया भेड़ों के 7 दिन के हो जाने पर जो बाल निकल आते हैं रुएं बारीक बारीक, उनके 2 भाग न हो सके ऐसे भाग भरना है। और जब वो गड्ढा पूरा भर जाए तो इतना पैक भरना है उसको कि उसके ऊपर से घोड़े की आवाज़ सुनाई दे। चक्रवर्ती अगर घोड़ा लेकर निकले अपनी कटक के साथ तो आवाज़ सुनाई दे खटाक 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 खटाक, इतना टाइट भरना उसको। और फिर 100-100 वर्ष में एक एक बाल निकालना है। जब वो गड्ढा खाली हो तो उसको व्यवहार पल्ले कहते हैं। असंख्यात व्यवहार पल्लों का एक उद्धार पल्ले होता है। असंख्यात उद्धार पल्लों का आरण लगाना चक्कर, बहुत भयंकर चक्कर आता है इसमें। असंख्यात उद्धार पल्लों का एक अद्धा पल्ले होता है जिसका नाम है पल्लोपम। भोग भूमि की जो आयु बताई ना वो उस पल्लोपम की आयु है। और 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। और यहाँ 20 कोड़ा कोड़ी सागर में कितने समय होते होंगे बस वो तो अपने ज्ञान का विषय ही नहीं है। केवली भगवान ने बोला हाथ जोड़कर स्वीकार करो कि बहुत भटके भगवान, अब आप पार लगा दो और कोई चारा नहीं है, बस भक्ति ही रास्ता है एक। बाकी ज्ञान वैराग्य के मार्ग में तो बहुत सारे लोग कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं। एक रास्ता ऐसा है भक्ति जो गरीब से लेकर अमीर और बीमार स्वस्थ हर कोई कर सकता है अगर उसका हृदय सरल हो, उसके अंदर में अपने अंदर लघुता और भगवान के प्रति प्रभुता ये भाव हो तो भक्ति होती है। वो कोई चारा नहीं है। 4 कारण है संसार से जल्दी पार होने के। धवला की पहली पुस्तक में एक पंक्ति आती है, समयसार की टीका में आचार्य जयसेन स्वामी ने भी कहा है कि बस संसार से पार होना तो बस इन 4 बातों को पकड़ लो। पहली बात द्वादशांग आवगमः। अब इसमें से ये भी सोचना कि मेरे लिए कौन सी बात बन सकती है, यानी मैं क्या कर सकता हूँ इन 4 में से। तो एक कह दिया द्वादशांग आवगमः, पूरी द्वादशांग जिनवाणी को सीख लो, तो ये अभी अपने बस की बात नहीं है क्योंकि द्वादशांग जिनवाणी अपने दुर्भाग्य से आज नहीं है। जल्दी से जल्दी संसार से पार होना हो तो पहली चीज है 12 अंगों को जान लेना। दूसरी चीज तत्तीव्र भक्ति ही, उनके प्रति तीव्र भक्ति होना जिनवाणी के प्रति। जिनवाणी के प्रति भक्ति होगी तो जिनवाणी के जो प्रणेता है उनके प्रति भक्ति होगी। फिर मूलकर्ता जो है उनके प्रति भी भक्ति नियम से होगी। देव के प्रति भक्ति होगी तो देव की वाणी में आए हुए जो शास्त्र गुरु आदि जो भी आराध्य हैं उनके प्रति भक्ति होगी। तो ये भक्ति भाव आ गया देव शास्त्र गुरु का। भक्ति यानी वहां पर आचार्य जयसेन स्वामी कहते हैं अरहंते सुभक्ति सम्मतम सम्यक दर्शन सम्यक अप्रतिपतित सम्यक्त्वाह सप्ताष्ट भवहि सेत्स्यन्ति। राजवार्तिक ग्रंथ में लिखा है, सील पावड़ में लिखा है कि भक्ति यानी सम्यक दर्शन। समय सार की टीका में भी लिखा है निश्चयेन भक्ति सम्यक्तम भण्यते, निश्चय से भक्ति सम्यक तो कहलाती है। अभी क्या है कि एक ग्रंथ पढ़ने से आपको लगेगा कि भक्ति सुराग, नहीं बाकी भी पढ़ो थोड़ा सा, एक पढ़ करके फटाफट मत फैसला करो। तो अरहंते सु भक्ति सम्मतम, वहाँ सम्यक्त की परिभाषा दी कि सम्यक्त क्या वस्तु है, तो बोले अरहंत भगवान की प्रशस्त भक्ति। तो सम्यक दर्शन की कितनी परिभाषाएं हो गई, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोवृताम सम्यक दर्शनम, फिर द्रव्यांतरेभ्य पृथक शुद्ध घनस्य आत्मनः दर्शनम सम्यक दर्शनम, सब पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और क्या कहा, सम्यक दर्शन के कितने सारे भेद बताए, कितनी परिभाषाएं। कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि नौ पदार्थों को निश्चय से जान लेना ही सम्यक दर्शन। फिर कर्म सिद्धांत में कह दिया कि दर्शन मोहिनी कर्म की सात प्रकृतियों के उपशम क्षय और क्षयोपशम से होने वाली जो एक विशुद्धि है, एक श्रद्धा है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और फिर सील पौड़ में कह दिया कि अरहंत भगवान की भक्ति सम्यक दर्शन है। अब बताओ क्या करोगे, कुछ नहीं करना, सबका भाव एक है, शब्द अलग है भाव एक है। तो वो सम्यक तो भी जल्दी से जल्दी संसार पार होने में सहायक होता है। तत्तीव्र भक्ति, उसमें तीव्र शब्द और जोड़ दिया कि जहां तक राग की भूमिका है पूरा राग उसी में खर्च करना है, फालतू कामों में राग मत लगाओ। कितनी बड़ी बात है, देखो रागी के लिए भी मार्गदर्शन, कितनी सुंदर बात, कितने उदार हृदय हैं आचार्य गुरु। क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पास राग है, हम जानते हैं कि तुम रागी जीव हो, लेकिन घबराओ मत, रागी जीव भी संसार से बहुत जल्दी पार हो सकता है। बस तीव्र भक्ति, वो बस उस भक्ति में ही अपना अनुराग बनाए रखें, इधर उधर राग ना करें, विषय कषायों में ना करें, और फिर और किसी सांसारिक वस्तु में ना करें, किसी व्यक्ति के प्रति भी ना करें, सिर्फ इधर राग रखे धर्म के प्रति, तो जल्दी से पार हो सकता है। फिर तीसरा कारण, रनिवृत्ति परिणाम, यानी देव शास्त्र गुरु के चरण सानिध्य में जो नियम लिया है, प्राण निकल जाए लेकिन वो नियम भंग न हो, ये जिसके अखंड नियम होते हैं वो भी संसार से बहुत जल्दी पार होता है। जिसके व्रत नियम आदि जो भी संकल्प है वो अखंड होते हैं वो भी बहुत जल्दी संसार से पार होता है। और आखिरी कारण बताया संसार से पार होने का, केवली समुद्घातश्चेति, केवली भगवान जो समुद्घात की प्रक्रिया कर लेते बस अब पारी हो गए समझ लो, समुद्घात करने के बाद फिर कुछ भी नहीं बाकी है। चौथा शुक्ल ध्यान कर लेंगे, 72 प्रकृतियों का एक समय में नाश कर डालेंगे, और अंतिम समय जो बचेगा संसार का 14वें गुणस्थान का आखिरी समय, वहां पर अगर तीर्थंकर हुए तो 13 प्रकृतियों का, और अगर सामान्य केवली हुए तो 12 कर्म प्रकृतियों का नाश करके अजर अमर अविनाशी पद निर्वाण धाम को वो प्राप्त कर लेते हैं। तो कितना जबरदस्त परिभ्रमण, देखो यहां से जन्म से लेकर के यहां तक के आ गए, 20 कोड़ा कोड़ी सागर के एक एक समय। उसी प्रकार यहां पर अकेला जन्म नहीं लिखा है, इसी में तो पसीना आ जाए, यहां लिखा है मरदीय, मरता भी है फिर। तो उत्सर्पिणी के प्रथम समय में किसी का मरण हुआ, अब किसी और उत्सर्पिणी के दूसरे समय में मरण हो, तीसरे में, चौथे में, ऐसा करते करते कितनी असंख्यात उत्सर्पिणी हो जाएगी। एक आवली के बराबर समय का हिसाब लगाने के लिए तो असंख्यात उत्सर्पिणियां हो जाएंगी। और फिर आगे का गणित बहुत लंबा गणित है, इतना भटकता है जीव संसार में, और ये तब जाकर के काल परिवर्तन पूर्ण होता है। काल परिवर्तन पूर्ण होते होते द्रव्य परिवर्तन कितने हो जाते होंगे, क्षेत्र परिवर्तन कितने हो जाते होंगे, और अब आगे जो भव परिवर्तन बता रहे हैं, उस एक भव परिवर्तन में कितने काल परिवर्तन हो जाते होंगे, ये आप विचार कीजिएगा। नेरय्यादिगदीन, नेरय्यादिगदीनम अवरठिदिदो वरठिदी जाव। सवट्ठिति सुविजम्मदि जीवो गेवेज पज्यन्तम्। अब देखिए जो आयु होती है चार गतियों के जीवों की, यहाँ तक अपन ने वैसे स्वाध्याय किया था, ये तो अपन एक झलक फिर से देख रहे हैं, इसके आगे की गाथा अपनी चलनी है स्वाध्याय में। तो ये जो भाव परिवर्तन है, भाव परिवर्तन क्या वस्तु है? चार गति संबंधी भाव होते हैं जीव के, होते हैं नरक गति, तिरेंच गति, मनुष्य गति और देव गति संबंधी। तो भाव परिवर्तन उसको कहते हैं कि जब कम से कम आयु लेकर के कोई जीव जन्म लेता है और फिर एक एक समय बढ़ा बढ़ा करके उसकी अंतिम जो उत्कृष्ट आयु है, अधिकतम आयु, वहां तक के पहुंचता है। अब देखिए कैसे होती पूरी स्थिति, तो नरक गति है। तो नरक गति में शुरुआत कैसे करेगा? कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, कषायवान है, वो असैनी पर्याय से 10,000 की स्थिति बांध करके प्रथम पृथ्वी में सीमंतक नाम के बिल में उत्पन्न हो जाता है और 10,000 की स्थिति लेकर अपनी आयु पूर्ण करता है, वहां से निकल जाता है, संसार में भटकता रहता है, क्योंकि नरक से निकलकर वापस नरक नहीं आता। यानी नरक का जो भाव है उसका अगला भाव नरक में नहीं होता, वो तिरेंचों में जाएगा या मनुष्यों में भी जा सकता है। गया फिर दोबारा जब वहां उत्पन्न होगा तो फिर से 10,000 की स्थिति लेकर के, 10,000 प्लस एक समय अभी नहीं लगाना, 10,000 की स्थिति में उत्पन्न होगा। ऐसा करते करते 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं, कितने समय होते होंगे 10,000 वर्ष में? एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, संख्यात आवलियों में एक उच्छ्वास होती है, फिर कितने उच्छ्वासों में एक निमेश, काष्ठा, पल, विपल, कितने सारे, फिर मुहूर्त कितने समय में आता है? 48 मिनट तो अपन अभी आज की घड़ी से देखते हैं, लेकिन उसमें ये समय कितने होते होंगे? तो 10,000 वर्ष में जितने समय होते हैं उतनी बार वो 10,000 की आयु लेकर के जब नरक में उत्पन्न हो चुकता है, तब यहाँ का कांटा 10,000 वर्ष वाला पूरा हो जाता है। बस अब आगे गति होगी। अब जिस समय वो दोबारा कभी नरक जाए और 10,000 में एक समय अधिक स्थिति लेकर उत्पन्न हो, तो ये कांटा यहाँ से ऐसे एक पॉइंट आगे खिसक गया। फिर इसके बाद एक एक समय बढ़ाते 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 प्रथम पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु एक सागर है, कहाँ 10,000 वर्ष एक बूंद के बराबर, और एक सागर सागर विशाल सागर है, तो वहाँ तक के एक एक समय बढ़ा बढ़ा करके वो उत्पन्न होता चला जा रहा, होता चला जा रहा है। फिर दूसरी पृथ्वी की जगन्यायु एक सागर में एक समय अधिक, या फिर एक सागर जगन्य ले लो, और फिर उत्कृष्ट आयु तीन सागर। तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते तीन सागर, ऐसा करते 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 नरक की जो अंतिम आयु है 33 सागर, वहां तक एक एक समय बढ़ाता हुआ उत्पन्न होगा। 33 सागर तक उत्पन्न होते होते अनंत भाव कितने भाव हो जाएंगे? मिनिमम असंख्यात, उससे कम तो होना ही नहीं किसी कीमत पर, क्योंकि एक आवली आयु बढ़ाते बढ़ाते तो असंख्यात बार पैदा होना ही है निश्चित। तो 33 सागर तक के पैदा होने के लिए कितनी बार उसको सप्तम पृथ्वी में जाना पड़ेगा, कितनी बार उसको वज्र ऋषभ नाराज संघनन प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पुण्य के पाप नहीं होता। जो सबसे तगड़ा पाप होता है वो तगड़े पुण्य कमा कर आने वाले जीव ही कर सकते हैं। वज्र ऋषभ नाराज संघनन जिनके उदय में हो, और भी सारी अनुकूलताएं हो पाप करने की, तभी सफलता मिलती है पाप करने में, नहीं तो चोर पकड़ा जाता है अगर पाप का उदय हो तो। चोर के पुण्य का उदय रहता है तब जाकर के वो पकड़ में नहीं आता, बच जाता है। तो पाप में सफलता के लिए भी पुण्य की अपेक्षा रहती है, और उसमें फिर और घोर पाप कमाता है। पापी व्यक्ति जितना पाप नहीं कमा सकता, उतना पुण्य के उदय में पाप करने वाला पाप कमा लेता है। और फिर ऐसा करते करते कितनी बार वो उत्पन्न होगा, जब जाकर के नरक गति का परिवर्तन, ये चार हिस्से हैं समझ लीजिए, ये नरक का यहाँ पर 33 सागर का पूरा हुआ। फिर यहाँ तिरेंच गति चालू होती है अंतर्मुहूर्त में, सबसे जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त है, याद है आपको? तत्वार्थ के तीसरे अध्याय के अंतिम दो सूत्र हैं, नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर्मुहूर्ते तिर्यग योनि जानान च, तिरेंच योनि में उत्पन्न होने वालों की भी जगन्य आयु अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट तीन पल्ले। तो अंतर्मुहूर्त में जितने समय हैं उतनी बार वो अंतर्मुहूर्त की आयु के साथ उत्पन्न होगा तिरेंच गति में। फिर एक एक समय बढ़ाते 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 3 पल्ले तक पहुंचेगा। एक पल्ले वाला गड्ढा याद कर लेना, वहां तक पहुंचेगा। और उसके बाद फिर मनुष्य आयु में आएगा। मनुष्य की जघन्य आयु अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले, उसमें भी वैसे ही परिभ्रमण करेगा। और उसके बाद फिर आखिरी में देवायु है। अब देवायु के बारे में विचारणी बात है, मैंने एकदम दिमाग में चोट पहुंचती है कि कितनी बार एक जीव देव बन जाता है, कितनी बार। तो देवों की जो जघन्य आयु है 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमा भवनेशु च व्यंतराणाम च, भवनवासी और व्यंतरों की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। तो 10,000 वर्ष की आयु में जितने समय होते हैं उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु के साथ उत्पन्न हो जाए वो, और फिर एक एक समय बढ़ाते 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 फिर 1 सागर 2 सागर 3 सागर 4 सागर कहाँ तक, 31 सागर तक। 33 नहीं, क्योंकि 31 सागर के ऊपर भावलिंगी मुनि ही जा सकते हैं। 22 सागर से ऊपर मुनि ही जा सकते हैं, वो द्रव्यलिंगी भी हो या भावलिंगी भी हो, लेकिन 31 सागर के ऊपर नियम से भावलिंगी मुनि जाएंगे। 3 तीर्थंकर ग्रैवेकों से आए थे, बाकी अनुत्तरों से आए थे, और 12 तीर्थंकर 16 स्वर्गों से आए थे, और इस प्रकार 24 तीर्थंकर यहाँ से चले गए, लेकिन अपन नहीं सुधर सके। अब जब तीर्थंकर नहीं है तो थोड़े झटके लग रहे हैं जिनवाणी से, अब भी सुधर जाए बहुत अच्छा मौका है, गंवाना तो नादानी होगी। तो फिर मनुष्य पर्याय का और देव पर्याय का जो भ्रमण है उसको पूर्ण करने के लिए 10,000 वर्ष से लेकर 22 सागर तक तो चलो ठीक है, माना कि जा सकता है कोई, लेकिन 22 सागर से ऊपर जाने वाला नियम से मुनि मुद्रा का धारी ही होता है। और दूसरी बात, नाराज संघनन कम से कम उसके पास होना चाहिए, यानी मुनि मुद्रा तो कई बार धारण कर सकता है जीव और छोटे संघनन के साथ, लेकिन नाराज संघनन के धारी जो मुनि है कम से कम वो वहां जाकर के उत्पन्न होते ग्रैवेक में। तो ग्रैवेक में 22 सागर में एक समय अधिक स्थिति से फिर बढ़ाते बढ़ाते, अगर बीच में स्थितियां ज्यादा कम हो जाए तो फिर वो पूरा टाइम तो निकलता जा रहा है लेकिन पॉइंटर नहीं खिसक रहा है, क्या करोगे। ये परिवर्तनों का इस प्रकार से चिंतन करना जरूरी है, सिर्फ पन्ने पलटा लेने से काम नहीं चलता, अपने अंदर वो चुभना ही चाहिए बात, और ये चुभ जाए हो सकता है सुनकर के सम्यक दर्शन हो जाए किसी जीव को। कहते हैं कि अभव्य मुनि के उपदेश से भी सम्यक दर्शन होता है, वो उपदेश अभव्य मुनि का नहीं है, उनकी आवाज है, उपदेश तो जिनेन्द्र भगवान का है। जैसे अभी यहाँ जो आप सुन रहे हैं ये आवाज़ यहाँ से आ रही है और फिर उधर स्पीकर में आप तक पहुँच रही है, लेकिन यहाँ पर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यानी ये भी साउंड बॉक्स है। तो अभव्य मुनि भी जो बात कह रहे हैं वो जिनवाणी की बात है, तो जिनवाणी के श्रवण से जीव को सम्यक दर्शन होता है, अभव्य की वाणी से नहीं होता। सम्यक दर्शन किससे होता है, धर्म श्रवण। तो इस प्रकार फिर 31 सागर तक वो पूर्ण करने में कितने भव हो जाएंगे कोई हिसाब नहीं है, अपने को तो पता नहीं कितने भव होंगे, लेकिन पंडित दौलत राम जी ने लिखा है 6 डाला में 2 बार लिखा, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, आगे का मत बोलो बस इतना ही काफी है। फिर 5वीं ढाल में फिर लिखा है, अंतिम ग्रीवक लौ की हद पायो अनंत बिरियापद, अब इसके आगे भी मत बोलना, सिर्फ अभी जो पॉइंट विषय जो चल रहा है उसी की बात करना, तो ज्यादा बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं, अपन बिल्कुल मंद बुद्धि है इसलिए भटक रहे हैं संसार में, अगर एक बार अपने अंदर विवेक बुद्धि आती तो फिर अभी यहां जन्मते नहीं अपन, मिथ्यात्व के साथ भी विदेह क्षेत्र में जन्म लेते क्या तकलीफ थी, लेकिन ऐसे कर्म बांध करके आए कि नहीं मिलेंगे तुमको भगवान के दर्शन इस जीवन में, इतने अभागे होकर के अपन यहां आए हैं, फिर अभिमान किस बात का, क्या है क्या अपन यहां पर इतने विशाल संसार में अनंतानंत जीवों के बीच में, क्या किसके गले में माला डालें, कौन स्पेशल है, कुछ भी नहीं। जो स्पेशल समझ रहा है वो स्पेशल संसारी है, संसार में भ्रमण करने वाला, क्योंकि यही कषाय तो भटका रही है जीव को। तो इस प्रकार 31 सागर तक की पूरी स्थिति करने में भाव भ्रमण जो पूरा चारों गतियों का होता है, यहां पर आचार्य क्या कहते हैं, नीचे जो एक गाथा है टीका में उसमें बहुसो लिखा है, भवट्टिदे हिंडदो हिंडिदो बहुसो। बहुसो माने एक भाव भ्रमण नहीं किया इसने, एक भाव परिवर्तन नहीं किया, बहुसो यानी बहुत बार भटक चुका है। अब फिर आगे भाव परिवर्तन है, माने यहां तक के अपन समझ जाए संभल जाए कि कितना जीव भटका है। अब इसके बाद फिर भाव परिवर्तन सबसे विकट है। जिस प्रकार एक निगोद शरीर में अनंत जीव होते हैं, उन जीवों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एक बराबर होते हैं। वो तो कोई भाग्य योग से कर्म योग से कई ऐसी कोई मंद कषाय रूप भाव हो जाए किसी का, तो फिर वो निगोद से बाहर निकल पाता है। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्री तनधार, तहते चै था नहीं, उसके बाद वाली लाइन क्या है, बीत्यो एक इंद्री तनधार, निकसी भूमि जल जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। वहां से निकल पाना कितना दुर्लभ है। अभी खैर बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा में ये सारा चित्रण आता है आगे, लेकिन ये सोचने की बात है कि कितनी बाधाओं को पार करके, कितने हर्डल्स को पार करके अपन यहां तक पहुंचे हैं। मनुष्य पर्याय की भी कितनी अड़चनों को अपन ने क्रॉस कर लिया है तब जाकर के यहां आए हैं। और यहां यदि अपना सुधार हो जाए तो हो जाए, वरना और कहीं तो कोई ऐसा स्थान है नहीं इस युग में कि देवशास्त्र गुरु के सिवाय और कहां जाओगे आप। तो विदेह क्षेत्र में भी कोई चारा नहीं है, देवशास्त्र गुरु के ही सानिध्य में आत्मा का कल्याण होता है। क्षायिक सम्यक दर्शन जिनेन्द्र भगवान के ही चरणों में होता है और कहीं नहीं होता। तो इस प्रकार ये चार परिभ्रमण कितने प्रचंड है, इनको सुन करके तो एकदम मन घबरा जाता है। जब भी कभी मन में बुरे विचार आए, क्या होता है कि जब अपन ज़्यादा पर्याय दृष्टि बनते हैं तो फिर ये सब भूल जाते हैं कि अपने एक ही द्रव्य में अनादि और अनागत जो पर्याय है वो कितनी हैं, इस तरफ ध्यान नहीं जाता। वर्तमान पर्याय में उलझ जाते हैं, कषाय करने लग जाते हैं, विषयों में फंस जाते हैं। और जो कर्म बंद होता है, फिर यहाँ स्वाध्याय करो तो पता चलता है कि अरे मैं कितनी भूल कर लेता हूँ, नहीं मुझे अब अपना सुधार करना है। और ऐसा नहीं, अपने से नाराज होने से भी काम नहीं होगा, अपने से नाराज होना भी कषाय है, और कषाय से कभी अपना हित कैसे संभव है। नाराज होने की बात नहीं है, धीरे धीरे अपने अंदर अपने मन को प्रोत्साहित करो कि चलो तुम्हें ये काम करना है, ये नया काम है। क्योंकि मन जो है नई चीज़ पसंद करता है, पुरानी चीज़ पसंद, ये नया काम है बोले। और इस प्रकार उसको धीरे धीरे लगा लगा कर, आचार्य ने कहा था हमसे निमावर की बात है, बोले कि मन से लड़ना नहीं है। मन को जितने लोग जितने प्रकार से रोकना चाहते हैं वो सब विफल जाता है उनका पुरुषार्थ, क्योंकि मन कभी रुकता नहीं है। मन को बस दिशा देनी पड़ती है, अगर मन को सही दिशा मिल जाए तो फिर बस जीव को वो अच्छी जगह ले जाए, और अगर गलत दिशा हो जाए तो भटका दे। इस प्रकार ये चार परिभ्रमण का वर्णन अपन ने सुना है इसके आगे। और इसमें साथ में ये भी कहा मिच्छत्त वसा, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर जीव भटकता है संसार में। आगे भाव परिवर्तन है।